रेंट की हुई है।
अब पता नहीं उन्होंने की होगी, लेकिन बलूचिस्तान हाउस में काफी कमरे हैं वहां पे, जो भी मिनिस्टर आपके ब्यूरोक्रेट्स या एमपीएस वगैरह आते हैं, जिनको अपनी अगर जगह है, अपने घर है या अपार्टमेंट है, वो वहां पे रहते हैं।
अक्सर बलूचिस्तान हाउस में आप क्या देखते हैं? मैं ये कहती हूँ कि कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में भी एक चीज होती है कि इंसान अगर गलती हुई है उसको उसका इकरार करे और दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे का हिस्सा है, वी कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड वी शुड नॉट बी सेपरेटेड, रादर कि अपनी गलतियों का एहसास करने के बाद दोबारा मिलाप की कोशिश की जाए, रिकंसाइल करने की कोशिश की जाए। आप जॉब्स में हिस्से लें, आप क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? हर चीज को तोड़ने से तो सल हल
नहीं जी, हम नहीं कहते कि तोड़ने से मसले हल होंगे, लेकिन मसले की हल के लिए उसके जो स्टेज होते हैं कि पहले आपकी बात कोई सुने, जब सुनेगा तो फिर समझना पड़ेगा उसको, जब वो समझ पाएगा फिर हल की तरफ जाएगा। जबकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, बांग्लादेश जो बंगाल था आपका पांचवा सूबा, आप भी तारीख से अच्छी तरह वाकिफ हैं जी, और जब पाकिस्तान बना उसकी तहरीक बंगाल से शुरू हुई थी।
बिल्कुल सही,
बलूचिस्तान से
प्योर पाकिस्तानी थे वो।
वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे, सबसे बड़े और जो है ना मोहब्बे वतन पाकिस्तानी थे। उनको इन किसी कुदरती आफत ने तो उनको अलग नहीं किया, खुद हमारी रियासत, हमारे पॉलिटिकल लीडरों ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने और रियासत के उन इदारों ने जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क को बचाएं, उन्होंने अब उन बंगालियों को बजोर शमशीर, वो अलग होना नहीं चाहते थे, उनको अलग किया गया। और ये भी नहीं, क्या काश के उनके अलग होने पर वो चंद आंसू बहाते, उन्होंने यहां पर खुशियां मनाई, यहां पे शादियां ने बजाए कि अच्छा हुआ इन बंगालियों से हमारी जान छूट गई। तो बलूचिस्तान के लोग आज जो अलग होना चाहते हैं, उनको भी उसी उन्हीं एलिमेंट्स ने उसी तरीका का या उससे बदतर रवैया अख्तियार करके उनको उस स्टेज पर लाएं जो आज बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कराना चाहते हैं।
बहुत शुक्रिया सर, मगर तारीख का अगर मुतालिया किया जाए, अभी रिसेंटली जनाब नरेंद्र मोदी, और मैं ये कहती हूँ मेरे अपने घर की पॉलिटिक्स सही होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब, जनाब हसीना वाजिद साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी जब ये बांग्लादेश गए थे, नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा अलग ऐलान इस बात का एतराफ किया था कि यस मुक्ति बहिनी ने रोल प्ले किया था, इंडिया ने, जिसको बाद में लोगों ने ये भी कहा था कि इसको जो क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए। हम बाजू का सुनी सुनाई बातों में भी आ जाते हैं और रिफ्ट डालने वाले रिफ्ट भी डाल देते हैं। आई थिंक सो टुगेदर वी आर मच स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, मगर
मेबी एक लाख लाखों बंगालियों को कत्ल करने वाले कौन थे? हजारों की तादाद में बंगालियों औरतों की असमत दरी करने वाले हिंदुस्तानी फौजी थे, मुक्ति बयान थे या पाकिस्तानी फौज थी? 90,000 फौज ने जो हथियार फेंके वो किसकी फौज थी? तालिबान का लश्कर था, कश्मीर के जिहादी थे या हमारे इस मुल्क की फौज थी?
मुझे बड़ी हैरत है इस बात की। मैं यहीं पे अपने प्रोग्राम को रैप अप करूंगी कि आप 2018 से लेकर 2023 तक नेशनल मेंबर नेशनल असेंबली रहे, और काकड़ साहब को क्यों लेके आए थे? काकड़ साहब वाज नीदर हैड नो पोजीशन बिफोर दैट, आज वो सेनेटर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे। क्या वो उनकी जुबान अच्छी बोलते थे? क्या बलूचिस्तान वाले काकड़ साहब के साथ क्या सलूक करेंगे? यानी उन्होंने भी तो सौदा ही किया ना, आपका बलूची है वो।
काकड़ बेसिकली पश्तून, दे आर नॉट बलूच, लेकिन वो बलूचिस्तान का रहने वाला है। काकड़ एक बड़ा कबीला है बलूचिस्तान में बसने वाला, और उसको लाया इसलिए गया था। बचपन में हम जमाने में होते थे जी, जिनको ग्रामोफोन कहते थे, उनके रिकॉर्ड होते थे और उस पर एक तस्वीर होती थी ایک جانور جو ہے اسپیکر میں بولتا ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں ہز ماسٹر وائس.
جی سر.
کاکڑ کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ہز ماسٹر وائس, ان کا وائس ہے. تو اس طرح کہ نہ کہ صرف بلوچستان میں, کئی علاقوں میں لائے گئے ہیں جی. یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں وزیر اعظم بنے ہوں, امریکہ سے ان کو لے آئے, جو شلوار کرتا پہننا نہیں جانتا تھا ان کو لا کے وزیر اعظم کر دیا گیا. ورلڈ بینک سے لوگوں کو جو برسر روزگار تھے ان کو لا کے یہاں پر وزیر اعظم بنا دیا گیا. کئی ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو پاکستان میں جہاں پر کاکڑ جیسے جو ہے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ میں ان کے نام جو ہے نا اچھے الفاظوں میں اور سنہری الفاظوں میں نہیں بلکہ کالک کے ساتھ لکھے جاتے.
بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, بہت شکریہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, یہ ریزرویشنز ہیں اور ہر میرا مقصد کہ میرے ملک کا حصہ ہے, ذخائر سے مالا مال ہے, اس ٹرائبل ایریا ہے, ان کی ویلیوز کا اقدار کا خیال کرتے ہوئے وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن رادر دین کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں. اینڈ آئی نو ہر چیز کا سولوشن اس دنیا میں موجود ہے. ڈو یو تھنک کہ آج بھی آپ پرائم منسٹر بننے کے لیے ڈگی میں گاڑی کے بیٹھ کے بند ہو کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ڈکٹیشن لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, وائی ڈونٹ یو سٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ سیٹل اٹ ڈاؤن ود دیم, اور پاکستان اسی طرح قائم اور آباد رہے, زندہ پائندہ رہے. ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں.
بی بی وہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لوگ بات کریں گے جو, میری ابھی بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, ان کا وفد جو آیا تھا, میں نے جو باتیں ان کے سامنے رکھی وہ کہتا ہے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. تو میں نے بولا آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے, کہتا ہے ہم لوگ بات نہیں کر سکتے. تو میں نے بولا پھر آپ اپنے آپ کو پولیٹیشین نہ کہیں, آپ اپنے آپ کو لیڈر نہ کہیں, آپ ملازم ہیں. جن کو ملازم ہونا چاہیے وہ آپ کے باسز بنے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ان کے ملازم بنے ہوئے. تو یہ لوگ جب
ملازمت اختیار کر لیے,
جن سے آپ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے ان سے بھی بات کی,
اچھا
ان سب سے بھی بات کی. میں نے اس لیے آپ کو وہ بات کی کہ وہ مائنڈ سیٹ جو روز اول میں نے والد صاحب کا جو قصہ سنایا آپ کو, اس مائنڈ سیٹ کو میرے والد صاحب ختم نہیں کر سکے, میں کیسے ختم کر سکتی. کوشش کی ہم نے لیکن وہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے کے لیے جو نا وہ بالکل تیار ہی نہیں.
جناب اختر منگل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے. مقصد صرف یہ کہ اللہ کرے کہ ہم پرانی باتوں کو بھولنا پڑے گا کہیں نہ کہیں, مگر ہم کو ایک رستے پہ چلتے ہوئے بلوچستان کو بلوچستان کا حق زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے. اگر ہم ذخائر کی بات کرتے ہیں اس علاقے سے, تو اس زمین کے لوگوں کا اس پہ حق ہے, ان کو اس کا حق زیادہ ملنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہر چیز کو کوڑیوں کے دام بیچ دیا جائے. بہت شکریہ جناب اختر مینگل صاحب, پیغام دیجئے گا پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, اور کوئی ایک راستہ بتا دیجئے گا جس میں ہم ریکنسائل کیا جا سکے غلطیوں کو مانتے ہوئے اور ایمانداری سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے صحیح طرف جانے کا کوئی ایک راستہ یا ایک کوئی سولوشن بتا دیجئے.
جن وسائل کا آپ نے ذکر کیا, بلوچستان کے سوری سے شروع ہوتے ہیں, اس میں آپ کا سندک بھی آ جاتا ہے, آپ کا ریکوڈیک بھی آ رہا ہے, آپ کا سائل گوادر, اور اس پر جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں. ہمیں یہ تو بتا جائے کہ ان وسائل سے اور ان جو ڈیولپمنٹ ہوئے بلوچستان کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے. ہمیں لگژری گاڑیاں ملی ہوں یا ہمیں بنگلے ملے ہوں, عام بلوچ کو اس گیس سے جو 1952 سے دریافت ہوئے ابھی تک وہ گیس ڈیرا بگٹی تک نہیں پہنچ رہی. ابھی بھی ڈیرا بگٹی سوئی کے لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں, لیکن اس گیس سے آپ کے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے جو برنر چل رہے ہیں, ملک کے مختلف علاقوں میں اس گیس سے چولہے جل رہے ہیں, لیکن ہم ابھی تک وہ قدرتی لکڑیوں پہ گزارا کر رہے ہیں. پیغام تو یہی ہوگا کہ جس ملک وہ یہ ملک کو اپنی ڈگر پہ اصلی ڈگر پہ جب تک نہ لایا گیا, اس کو جو ٹریک کے کینٹ کا اور ڈی ایچ اے کے کینٹ ٹریک پہ ریلوے ٹریک پہ چلا دیا جائے گا तो ये रेल न चल सकेगी, न ही ये ट्रैक जो है आगे के लिए जो है देरपा हो सकेगा। इसको उस छावनी के उससे निकाल देना पड़ेगा।
आज रात पाकिस्तान में फिर मंडी लगी और जनाब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के अराकीन कौमी असम्बली सेनेटर आज, क्योंकि सेनेट में इनको दो तहाई अक्सरियत का मसला आ रहा है, मेरा ख्याल है नेशनल असम्बली में तो नहीं, तो ये जो एक बार फिर मंडी लगने लगी है, तो बलूचिस्तान का भी कोई रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा जनाब? वो जो आपके मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने तो अपने लिए विन विन सिचुएशन कर ली, आपने क्यों ना की? एंड दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन।
मैडम बिल्कुल अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। जाहिर मैंने जब कहा कि बिजनेस मैन होंगे तो मंडी तो लगेगी, चाहे वो सब्जी मंडी की मंडी लगे या बकरा पीढ़ी की मंडी लगे या कोई और मंडी उसको नाम दें, ये मंडियां तो हमेशा पाकिस्तान में लगती रहती है। इसमें मुझे याद है कि हमारी पार्टी के दो सेनेटर्स हैं, उनको धमकियां दी गई कि आप आए इसमें वोट दें। एक हमारे सेनेटर जिनका ताल्लुक लसवेला से जी, परसों उसके घर पे बाकायदा छापा मारा गया कि जी छह मुश्तबा लोग जो है ना आपके घर में घुसे। उनके नौकर कहते जी यहाँ पे तो कोई नहीं घुसा, आप लोग आस पड़ोस के, मतलब एक प्रेशर उन पर डालना। अब आप खुद सोचें, उस आइन की तरामीम आप इस जबर के साथ करेंगे, इस नारवा सलूक के साथ उस आइन में आप तरामीम लाएंगे, तो उस आइन की हालत क्या होगी? चाहे उसको आप कैरेट से खरीदें या स्टिक का इस्तेमाल करके लोगों की वफादारियां आप तब्दील करें, और फिर वो फिर हमें कहेंगे कि इस आइन को हम माने। पहले आप तो उस आइन की कदर करें, आप उस आइन की जो पर हाथ रखें, चाहे आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, आपके पॉलिटिशियन हो, जब उस आइन पर हाथ रखे कि हम इसकी वफादारी और पासदारी की कसम खाएंगे, जब उसको बनाने में या उसमें तरामीम लाने की आप लोगों की जो इज्जत नफ्स को कुचल कुचल कर उसमें डालेंगे, तो ये मत एक्सेप्ट करें कि फिर उस आइन को कोई मानेगा।
बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर मंजिल साहब आपके शमूलियत का। वी लुक फॉरवर्ड, देखते हैं कि क्या सूरत हाल अगले चंद दिनों में लगती है। मुझे तो थोड़ी मखदूश नजर आ रही है, मुझे लगता है ये जो ट्राइका है, ट्राइंगल है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उस ट्राइंगल में। आई थिंक सो, जितनी न्यूज आ रही है। बहर अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी नासिर रहे। आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया सर। आई लुक फॉरवर्ड कि आपसे दोबारा भी बात हो पाए।
थैंक यू
वेरी मच सर। थैंक यू। जनाब सरदार अख्तर मंजिल साहब से मैंने आपकी बात कराई, यानी उन लोगों की जुबानी आप तक पैगाम पहुंचाया जो लोग सफर कर रहे हैं। मैं तो हमेशा ये लफ्ज कहती हूँ कि दहशतगर्द कैसे पैदा होते हैं। एक माँ जिसका बच्चा भी मर गया, शौहर भी मर गया, उसका कोई भी नहीं रहा, अब उसके पास क्या ऑप्शन? वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन जिसमें बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स वी कैन अचीव द रिजल्ट्स। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी नासिर है सर। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू
throughout Ontario, no appointment needed, drive-through facility, one-stop shop. Up Tisri location, exit 579 from Highway 401. In Napanee, quick truck view, 519-622-0660, quicktruckloop.com.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ontario.ca/builds ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 6479023773।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुके है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गार्लिक कीजी, सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो। 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
पाकिस्तान पैसे भेजना अब हुआ आसान। यूज लेम्फाई फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। कनाडा से पाकिस्तान पैसे मिनटों में पहुंचते हैं, बराह रास्त जिसको आप भेजना चाहें। बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर। कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैश बैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लेम्फाई
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478724900
چاندنی بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye. 437-218-8734. ChandniHalls.ca.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300, 905-272-2300,
वेलकम बैक तमाम सामाइन को जो 770 एम डायल सुन रहे हैं। प्रोग्राम साजो आवाज, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब हमारे साथ प्रोग्राम में गर्मा गर्म खट्टी मीठी खबरें लेके शाजिया मलिक साहिबा भी प्रोग्राम में शामिल भी हुई हैं, उनको थोड़ी देर में जोड़ भी लेते हैं। कनेक्शन बहाल होने लें फिर उनको जोड़ लेते हैं। आप सुन रहे हैं 770 एम डायल प्रोग्राम साजो आवाज। अगर आप कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां गड्ढे आ रहे हैं और आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 और अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई बात करनी है 770 एम डायल पर तो 416-620-1778 हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां आप रेडियो सुन सकते हैं और हमारा टेलीविजन भी देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम ही स्पॉन्सर्स के नंबर भी आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल ई आवाज टीवी एंड रेडियो, आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए और कॉमेंट में बता देंगे मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं। ठीक हो गया, यहां तक की कार्रवाई पूरी हो गई। कब तक रहेंगे हम साथ जनाब? बिल्कुल आज भी 7:30 बजे तक ये गर्मी के जानवर आपके साथ रहेंगे। पानी का होता है ना, पानी के जानवर, खुशी के जानवर, तो गर्मियों के जो लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे 7:30 बजे तक। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि खट्टी मीठी खबरें लेके शाजा जी को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS,
थैंक यू, वेलकम। शाजा जी, कैसी गुजरी आपके वीकेंड?
वैसे ही गुजर रहे हैं अभी, क्या करेंगे। अभी बहुत सारे जो हैं वो आ गए हैं, फ्रेंड्स आ गए हैं और कुछ आ रहे हैं।
हल्ला गुल्ला है ना?
हल्ला गुल्ला है और मेरे नहीं, अभी हल्ला गुल्ला मेरे घर में वीकेंड के ऊपर होएगा। बहुत सारे बंदे आ रहे हैं वीकेंड में मेरे पास।
अच्छा, आपके घर लोग आते होंगे?
हाँ, बहुत समर में बहुत आए हैं।
तो वो आप उनको खाना तो देती नहीं होंगी, खबरें सुना देती होंगी? उनका वैसे पेट भर जाता
है। भैया हमारे घर जो आते हैं वो कहते हैं खबरें तो सुनेंगे लेकिन खाना भी खिलाओ।
सोचो घर में इनके को आता हो, पूछेगा शाजा जी वो आज की गर्मा गर्म, वो नहीं पूछता मुझे हमारे घर को आज यार वो भाभी ने गर्मा गर्म बिरयानी बनाई है, इनके घर यार शाजा जी वो गर्मा गर्म खबरें तो सुना दे,
लेकिन वो कहते हैं खाना भी खिलाओ।
अच्छा, खाना
खबरों से हमारा पेट नहीं भरेगा। हाँ, बड़े चटोरे किस्म के मेहमान आते हैं मेरे घर पे। अभी जो वीकेंड है उसमें काफी बड़ी दावत है फिर अब मेरे घर पे, क्या करेंगे अभी, है ना?
क्या करेंगे?
वैसे तो मेरे जो नाना जी हैं वो तो कहते होते थे कि जिन घरों में मेहमान आते हैं उन घरों में रहमत आती है, लेकिन ये तो कुछ अब ज्यादा ही चल रहा है, ज्यादा ही हो रहा है।
नहीं, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं।
हाँ,
और वो
इस साल मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही आए हैं।
अच्छा, ज्यादा रहमत आई है। बारिश इस बार कनाडा में ज्यादा हुई है,
ज्यादा आए। इस बार कुछ फ्रेंड्स भी आए हैं, इस बार फिर रिलेटिव भी कोई आए हैं। बेशक जब दो दो तीन तीन दिन के लिए आते थे, फ्रेंड्स तो खैर आए हैं कोई 10-15 दिन के लिए, कजन्स जो हैं वो 2-2-3-3 दिन के लिए आए हैं, ऐसे करके। तो ये काफी,
लेकिन हमें याद है कि हमारा बर्तन है वो नहीं मिल रहा।
मैंने बुलाया था, आप आ जाते हैं तो आपको मिल जाता ना। अब आपकी अपनी खुद की मर्जी है, ओ नहीं मैं तो इस ईद में बड़ा बिजी हूँ।
इसलिए मैं जापान में था ना।
हाँ, जापान में थे तो
हाँ, मैं आ नहीं सका। मैं जापान में था, मसरूफ था फैमिली के साथ, इसीलिए मैं आपके जो फ्रांस नहीं आ सका।
तो अब बस इसलिए फिर अब बर्तन नहीं तुम्हारा मिल सकता।
कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम
पे आ जाएंगे,
नेक्स्ट टाइम अरेंज करेंगे
इंशाल्लाह।
ठीक है, ठीक हो गया।
हाँ जी,
जनाब को
खबरें सुना
दें पहले के पत्थर हो जाए।
खबरें सुना देते हैं। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज़ लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस। विलेज टेस पे जाएं जी, दो इनके हैं रेस्टोरेंट, खालिद चट्टा साहब के और एक है इनका है फैसल चट्टा। मैंने खालिद का, ओ हाँ खालिद फ्रेंड मेरा आया हुआ था ना मेरे घर पे रहने को, तो फैसल चट्टा। हाँ जी, फैसल चट्टा साहब होते हैं, इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में, इसका नंबर है 9052323663 और दूसरा है ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, तो इसका नंबर है 9052262294। जाएं और एंजॉय का मजा लें। और जनाब टेलोस्कूडो स्टोर जो है बस इसकी आखिरी है, ये खत्म हो गई है इनकी जो भी अमेजिंग डील्स थी, लेकिन फिर भी आप 770 का नाम लेंगे इनके पास जाएंगे। ये रिजवे प्लाजा में है, 3470 प्लेटिनम ड्राइव, 9058001615 पे आप जाएंगे तो आपको बड़ी जबरदस्त डील्स मिलेंगी। और जनाब लेम्फाई जो है अपने एंड्रॉयड और अपने एप्पल के ऊपर आप डाउनलोड कर लें तो आपको बहुत सारे फायदे आने वाले हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और $250 आप भेज रहे हैं तो फिर आपको जो है $30 ऑफ मिलेगा इसके ऊपर ट्रांजेक्शन पे ना। इसके साथ साथ आपको जो है जीरो ट्रांसफर फी भी देनी पड़ेगी, तो बड़ी जबरदस्त सर्विस है ये, आप जो है ले लें। और जनाब क्विक ट्रक ल्यूब जो है 12 सितंबर को जबरदस्त वन डे ऑयल चेंज कर रहा है और $125 ऑफ दे रहे हैं। नैपनी लोकेशन के ऊपर ये सारी सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। ये हैं, दे आर एट एग्जिट 579 हाईवे 401 आप उधर जाएंगे और वो कह रहे हैं जी कि फ्री ट्रक ग्रीस जो है वो भी आपको दी जाएगी, तो जाएं वहां पे और जो है वो फ्री बारबेक्यू जो है उसका भी एंजॉय का मजा लें। ठीक है जनाब, ओके। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम आपको टूडो साहब के बारे में बता दें कि टूडो साहब जो है आज उनकी मुलाकातें बीसी के अंदर हो रही हैं अपने कॉकस के मेंबर्स के साथ इन ननीमो में, और वहां पे वो ऑफकोर्स सारी जो अपकमिंग इलेक्शंस है उसकी स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एमपी थे बहुत सारे लिबरल पार्टी के, वो बहुत दिनों से कह रहे थे इनको कि समर में ही आप हमसे मिले, हमसे बात करें ताकि हमें पता चले कि आगे इसको कैसे लेके जाना है। तो बहरहाल समर में तो इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकेंगी, और अब जो ये मिल रहे हैं तो इसमें चीजें इनके सामने काफी मुश्किल हैं। एक तो ये है कि वो कहना चाहते हैं कि जी ये जो अभी बाय इलेक्शन का जो लॉस इन्होंने देखा है समर में जो ट्रोनो के अंदर हुआ था, और ये जो लिबरल पार्टी है इसके एक कैंपेन डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, और इसके अलावा एनडीपी इनके साथ अलायंस में निकल गई है, तो वो कह रहे हैं जी कि अब ये सारी डेवलपमेंट्स में हमारी जो है नई स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इसके साथ साथ पहली दफा एमपीज के साथ मुलाकात करेंगे फॉर्मर बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर मार्क कॉर्नी, और लोगों को ने शायद इनको इनके बारे में ये सोच लिया था कि शायद ये टूडो साहब को रिप्लेस करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं इनका जो है वो एडवाइजर रहूंगा उसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। और इसके अलावा ये जो मीटिंग है इसमें सोचा जा रहा है कि रीजनल जो मसले हैं उनके ऊपर बात होगी, इंडिजिनस रूरल और वुमेन जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, और ये मीटिंग की जब और डिटेल्स आएंगी तो फिर हम आपको बताएंगे। आज से थाउजेंड्स ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस जो वर्कर्स हैं दे विल बी स्पेंडिंग सम मोर टाइम इन द ऑफिसेज, और जो है कैनेडियन गवर्नमेंट के मुताबिक यहां पे अब जो इन्होंने नया हाइब्रिड वर्क रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो आज से एनफोर्स कर दिए गए हैं। अब इसमें जो फेडरल कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनको अपने ऑफिसेज में मिनिमम ऑफ 3 डेज पर वीक रहना पड़ेगा, और ऑन साइट जो है एग्जीक्यूटिव्स उनको 4 डेज पर वीक रहना पड़ेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेजरी बोर्ड ऑफ कनाडा वेबसाइट। ये रिक्वायरमेंट्स जो है 2,82,152 एम्प्लॉयज जो कि कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है उनके लिए हैं, और इसके अलावा फिर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए भी हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज विच आर आउटसाइड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो है हमारे साथ कोहरेंटली काम करें ताकि तमाम पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो स्मूथ तरीके से जो हैं वो दी जा सकती हैं। बहुत एक लंबा चल रहा था इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स जो नेटवर्क है ट्रोनो के अंदर उसके ऊपर, जिसमें के बहुत सारे लोगों को कोई तकरीबन 11 सस्पेक्ट्स को पकड़ा है और 5 डजन क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लगाए गए हैं। हॉल्टन रीजनल पुलिस सर्विस जो है उसने आज अपना ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया था प्रोजेक्ट कैटफिश इसकी डिटेल्स दी हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये ज्वाइंट जो इन्वेस्टिगेशन थी हमने बिठाई हुई थी हाल्दीमैन काउंटी ओपीपी के साथ, और वो कहते हैं जी कि ये जो सारा ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग था ये हम मे से इसके पीछे लगे हुए थे, और दोनों फोर्सेज जो है मिलकर काम कर रही थी इन हाल्टन रीजन ग्रेटर टोरंटो हैमिल्टन के अंदर। इसमें 9 सर्च वारंट जो हैं घरों के लिए दिए गए हैं, और फिर इन्होंने व्हीकल्स बहुत से लोकेट किए थे बर्लिंगटन हैमिल्टन टोरंटो डनविल और कैम्ब्रिज के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि लॉ एनफोर्समेंट वालों ने फिर 11 लोगों को इसमें जो है वो पकड़ा था और चार्ज किया था। इनके पास से 2 हैंडगन्स 2 क्रॉसबोज 4 किलोग्राम मेथ 3 किलोग्राम कोकेन 950 ग्राम्स ऑफ फेंटेनॉल 120,000 कैनेडियन कैश 2 कार्स मिली हैं, और ये जो सस्पेक्ट्स हैं जब जनाब आप इनकी जरा एजेस देखें 19 ईयर्स से लेके 51 ईयर्स तक हैं, और इन्होंने अब जो है कोर्ट के सामने हाजिर होना है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई इनकी डेट्स रिलीज नहीं की है। इनमें से जो 4 लोग हैं जो कि पुलिस कस्टडी में थे उनको छोड़ दिया गया है क्योंकि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर कोर्ट डेट्स टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट्स। तो ये ऐसे है, तो मतलब क्राइम्स जो है वो तो जनाब दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो इस वीकेंड के ऊपर सबसे बड़ी खबर यहां पे कनाडा में सर्कुलेट कर रही थी वो एक पाकिस्तानी सिटीजन जो कि कनाडा के अंदर रह रहा है उसको अलेजली आईसिस के जो टेरर चार्जेस हैं जिसके के लिए वो प्लॉट कर रहा था उसके लिए इसको पकड़ा है, और ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जी कुछ ज्यूइश सेंटर्स जो हैं उनको ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ब्लो करना चाहता था। आरसीएमपी जो है और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये डिटेल्स दी है। उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद शाहजेब खान 20 ईयर्स टोटल इसकी एज है और ज्यादातर इसको शाहजेब जदून के नाम से याद किया जाता है, यानी कि इसको ज्यादा मशहूर ये शहजाद जदून के नाम से है। इसको जो ऑर्न्स टाउन क्यूबेक है उधर यहां पे उसको अरेस्ट किया गया है और ये ट्रोनो जा रहा था आ रहा था न्यूयॉर्क से। ये जो है इस ये अब आएगा सामने सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है मॉन्ट्रियल की उसके सामने ये अब हाजिरी देगा अप्रैल 13 को अकॉर्डिंग टू आरसीएमपी जो इनका प्रेस रिलीज आया है। वो यूएस अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड जो हैं उन्होंने कहा जी कि इसका जो गोल था वो मैन स्लॉटर था और ये आइसिस के नाम पे ये करना चाहता था ज्यूज के अगेंस्ट। उन्होंने कहा जी कि लेकिन थैंक गुडनेस फॉर द क्विक कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का जो एक्शन था उसकी वजह से ये पकड़ा गया। एफबीआई के जो स्पेशल एजेंट है खाजी हैस्टर उन्होंने कहा जी कि ये कुछ क्रिप्टेड मैसेजेस जो था अपने ऐप के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा था और उसमें हमारे फिर अंडरकवर एजेंट्स जो थे वो भी इसके साथ जुड़ गए थे, जिनको कि वो कह रहा था कि मैं असैसिनेशन प्लॉट के अंदर विलिंग हूं आपके साथ हिस्सा लेने में और मैं बाय करूंगा ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स। लास्ट नवंबर इसने ये भी कहा था कि मैं आइसिस की हेल्प करने को तैयार हूं और मैं टेररिस्ट एक्ट जो है वो भी करने को तैयार हूं, और इसने कहा था कि बड़ा बोस्ट किया था कि मैं 9/11 से भी बड़ा टेरर अटैक जो है वो यूएस में करूंगा। ये जो है ही इज फेसिंग वन काउंट ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू आइसिस। आरसीएमपी ने जो इन्वेस्टिगेशन खान के अंदर की थी अलॉन्ग विद एफबीआई उसमें उन्होंने कहा जी कि ये इसका एक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता और इसका बहुत ज्यादा थ्रेट जो था बढ़ रहा था, तो इसलिए फिर जो है इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई और इसका हमने पीछा किया। कनाडा के अंदर ही इज फेसिंग 3 चार्जेस। इसके अलावा जो सारी मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में हम बताते हैं, बट ही विल अपियर इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस इन मॉन्ट्रियल ऑन सेप्टेम्बर 13। लेकिन यूएस जो है वो कहता है जी कि बेशक ये कैनेडियन सिटीजन है, ये आप एक्स्ट्राडाइट करें यूएस में, क्योंकि ये यूएस के अंदर बड़ा जो है टेरर अटैक करने वाला था। जिस वक्त अंडरकवर ऑफिशियल्स इसके साथ लास्ट मंथ उन्होंने कांटेक्ट किया था तो उन्होंने इसको बताया झूठ मूठ के जी हमने वो तमाम वेपन्स ले लिए हैं जो तुमको चाहिए हैं। फिर इसने अलेजली एक गाड़ी ली और ट्रोनो से ये निकला और नेपियन की तरफ जा रहा था। रास्ते में इसने और कुछ पैसेंजर्स को बिठाया, नेपियन में इसने एक गाड़ी स्विच की, दूसरी गाड़ी में बैठा और फिर वहां से ड्राइव करके मॉन्ट्रियल गया। वहां पे जो कंप्लेंट आई थी एफबीआई को और आरसीएमपी को उसमें वो कहते हैं जी अन आइडेंटिफाइड एक औरत जो है, एक फीमेल जो है वो भी इसके साथ बैठ गई थी और फिर अबाउट 19 किलोमीटर फ्रॉम यूएस बॉर्डर इसकी जो व्हीकल थी उसको पुलिस ने रोका था और फिर इसको अरेस्ट किया था। तो ये बहुत बड़ा जो है ये इन्होंने वो कहते हैं जी एफबीआई वाले भी और आरसीएमपी भी कि ये बहुत बड़ा टेरर प्लॉट हो सकता था लेकिन हमने इसको बस्ट कर लिया है। आपको पता ही है कि अभी एक बाप और बेटा अलदीदी नाम से जो थे वो उनको अभी पकड़ा था और उनसे फिर ये सारे और भी जो हैं ये डॉट्स जो कनेक्ट कर रहे हैं उसमें ये और लोगों का भी पता चल रहा है। तो ये काफी जनाब बड़ी खबर थी। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं दे आर जस्ट अबाउट 2 मंथ्स अवे और इसके अंदर जो पोल्स आ रहे हैं अमरीका में वो बहुत बता रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी कमला हैरिस और रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रंप साहब हैं बहुत क्लोज चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज ने जो अपना पोल किया है उसके अंदर लग रहा है कि जैसे ट्रंप साहब 1 परसेंटेज पॉइंट से कमला हैरिस से आगे चल रहे हैं, यानी इनके पास जो है सपोर्ट 48% लोगों की है और कमला हैरिस के पास 47% की है। लेकिन मोस्ट जो पोल्स अभी शो हुए थे इसके अलावा वो ये दिखा रहे थे कि कमला हैरिस 1 परसेंटेज पॉइंट जो है इनसे आगे चल रही है, उसके पास 49% जो थी वो सपोर्ट थी और ट्रंप साहब के पास 47% थी बल्कि वो कहते हैं जी 2 परसेंटेज पॉइंट्स वो आगे चल रही थी। अलबत्त अब जो कल यानी कि सितंबर 10 को इन दोनों के बीच में एक टीवी डिबेट होने वाली है एट एबीसी न्यूज स्टूडियोज इन न्यूयॉर्क और उसमें वो कहते हैं जी कि वोटर से पूछा जाएगा कि भाई आप किसको सपोर्ट करेंगे और दोनों के लिए ये डिबेट बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। 30% लोगों से जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स सियाना कॉलेज के सर्वे ने लोगों से पूछा कि आपको कुछ हैरिस के बारे में पता है, उन्होंने कहा जी हमें उसकी पॉलिसीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है और लेकिन हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रंप साहब की पॉलिटिकल व्यूज और पॉलिसीज कैसी रहेंगी। इसके अलावा ये जो दोनों ही लीडर्स हैं जाहिर है कि जो ये बैटल ग्राउंड जो इनकी स्विंग स्टेट्स होती हैं उसके अंदर ज्यादा ये जोर लगाएंगे अपनी कैंपेन का ताकि वहां पे जितने भी अभी भी अनडिसाइडेड वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मोड़ सकें। तो जनाब ये जो है लड़ाई अमेरिका में भी दो दिग्गज लोगों के बीच में ये जरा थोड़ी सी बढ़ गई है। सर कायर स्टॉर्मर जो कि आपको पता ही है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं जी कि आयरलैंड के साथ अब हम अपने ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उसको रीसेट करना चाहते हैं। ये पांच साल में पहली बार है कि कोई ब्रिटिश पीएम जो है वो आयरलैंड को विजिट कर रहा है। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि ये एक नया ईरा ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप जो है वो इसके बीच में शुरू करेगा। प्राइम मिनिस्टर स्टॉर्मर जो हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं विद टाउसची, जिसको के बोलते हैं कि आयरिश प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं वो, और उनके साथ मुलाकातें की साइमन हैरिस के साथ, और दोनों ही जो हैं तकरीबन थोड़े थोड़े वक्फे में इलेक्ट हुए थे। जब हैरिस साहब अप्रैल में हुए थे और उसके तीन महीने के बाद स्टॉर्मर साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने थे। वो कहते हैं जी कि हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हमको बायलैटरल ट्रेड जो इस वक्त स्टैंड करती है वो 100 बिलियन से 120 बिलियन पाउंड्स पे स्टैंड करती है, लेकिन वो कहते हैं जी हमको इनको और आगे लेके जाने की जरूरत है, हमारी फाउंडेशंस जो है बड़ी स्ट्रांग है, और अब हम एनुअली एक समिट करेंगे जिसके के अंदर ट्रेड और कोऑपरेशन और सारी बातें डिस्कस करेंगे, जिसकी की वजह से हमारे जो एम्बिशियस टाइज हैं उसको हम रीसेट करेंगे। तो इसके ऊपर हैरिस ने भी बात करते हुए कहा कि यस ये बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों जो हैं को गारंटर्स हैं ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, और अब हम ये जो एनुअल समिट करेंगे जो कि अब मार्च से नेक्स्ट ईयर से शुरू होएगा वो हम दोनों मुल्कों को और भी करीब लाएगा। तो जनाब ये थी इंग्लैंड से खबरें। ये जो है टाइफून यागी, इसने जनाब बेतहाशा जो है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो है वो तबाही मचाई हुई है। 59 लोगों की वियतनाम के अंदर डेथ हुई है बिकॉज ऑफ रेन्स, एंड उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड्स और जो फ्लड्स आए हैं, वो कहते हैं कि एशिया का मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म था इन द लास्ट 10 ईयर्स, और वियतनाम का सबसे बड़ा ये स्टॉर्म रहा। ये जो स्टॉर्म था ये वियतनाम के साउथ ईस्ट कोस्ट में आया था, और उससे पहले इसने काफी तबाही मचाई थी चाइना और फिलीपींस के अंदर भी। वियतनाम के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के रूफ्स थे ये उड़ा के ले गया, जो बोट्स थी वो सिंक कर गई, लैंडस्लाइड्स आई, और दरख्त इतना ये पावरफुल था कि दरख्त तक अपरूट होके गाड़ियों पे और घरों पे गिरे और उसने काफी जो है तबाही मचाई। इसके साथ जो दूसरी खबर आई थी वो ये था कि एक फ्यूल टैंकर जो है वो दूसरे एक फ्यूल टैंकर के साथ एक ट्रक के साथ जो है उसकी टक्कर हुई है नाइजीरिया में, और वहां पे भी एक्सप्लोजन जो हुआ है उसमें भी 48 लोगों की डेथ हो गई है। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि वो जो टैंकर था फ्यूल टैंकर जो था उसके अंदर 50 कैटल भी थी, यानी कि भेड़ बकरियां भी थी, तो जिस वक्त ये एक्सप्लोजन हुआ तो 48 लोगों की और 50 भेड़ बकरियां जो हैं वो भी मर गई हैं जल के इसकी वजह से। तो ये जो हैं कुछ दुनिया में अफसोस के वाकये रहे। बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अब कह रही है जी कि हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करेंगे इंडिया से, जो कि भाग के चली गई थी अगस्त 5 को अमिड बहुत सारे जो आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट हुए थे यहां पे, जिसकी वजह से इनको अपनी गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी थी और ये इंडिया गई थी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के जो चीफ है मोहम्मद ताजुल इस्लाम, उन्होंने एक्यूज किया है हसीना वाजिद को फॉर ऑल द मैसेकर्स इन बांग्लादेश। मेन वो कहते हैं जी ये मेन परपेट्रेटर जो है ये मुल्क से भाग के चली गई है, लेकिन हम इसके खिलाफ जो है लीगल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे और इसको वापस लाएंगे। डिफेक्टो फॉरन मिनिस्टर जो है मोहम्मद तौहीद हुसैन, उन्होंने आज कहा कि जी बांग्लादेश जो है वो इनको वापस लाने की कोशिश करेगा ताकि ये अपने केसेस जो इनके खिलाफ हैं उनको ये फेस करें। एटलीस्ट 2 मर्डर्स जो हैं वो हसीना साहिबा के नाम पे हैं, इसके अलावा बहुत सारे मर्डर्स और बहुत सारी जो गलत काम है वो इनके सीनियर कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी हैं। बहुत सारे जो इनके फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं और एडवाइजर्स हैं उनको अभी तक अरेस्ट किया जा सका है। इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश ने एक क्रिमिनल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन किया था इंडिया के साथ 2019 में, और ये हसीना की गवर्नमेंट ने ही किया था व्हेन शी वाज इन पावर, तो इसलिए हम उनको वापस ला सकते हैं। शी इज मेन अक्यूज्ड इन ऑल द मैसेकर्स, और उन्होंने कहा जी कि आप इसको वापस लाएंगे तो ये अब यहां पे एक ट्रायल फेस करेंगी। ठीक है जी। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। आपको पता ही है कि ये ऑल स्टेट के साथ हैं, आजकल पिकरिंग में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पास वो कहते हैं जी दो गाड़ियां और एक घर है तो आपके बहुत ढेर सारे पैसे जो हैं वो ये बचा सकते हैं 1775 के करीब। तो आप राजा बादशाह जी जो है उनको कॉल कर लें, इनका नंबर है 6472903773 एंड जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, यहां पे छोटे बड़े आप अपने हर तरह के इवेंट्स कर सकते हैं। 2935 व्यू रोड मिसिसागा के ऊपर ये है। तो आपको अगर कोई भी अपने इवेंट्स करने हैं फैमिली के या अपनी कंपनी के, तो आप चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल वालों को कॉल करें, इनका नंबर है 6479653823 एंड डॉक्टर फियाज कुरैशी ये हर तरह की डेंटिस्ट्री की आपको सर्विसेज देते हैं। तो अगर आपको भी कोई अपनी डेंटिस्ट्री की सर्विस देनी लेनी है तो आप इनके दो मिसिसागा और एक स्कार्ब्रो क्लिनिक पे जा सकते हैं। मिसिसागा का इनके क्लिनिक का नंबर है 9052325678 और स्कार्ब्रो का नंबर है 4167579999। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर आज काजी फैज ईसा साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे आज फिर से पूछा गया कि क्या आप अपना जो टेन्योर है उसको बढ़ाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। इससे पहले फेडरल लॉ मिनिस्टर जो थे आजम तारर साहब, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि ये सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं। एक इनफॉर्मल टॉक कर रहे थे ये मीडिया के साथ इस्लामाबाद में सीजेपी साहब, और उन्होंने कहा जी कि अगर दूसरे कोई जजेस एक्सटेंशन लेना चाहते हैं अपने टेन्योर में तो वो लें। इनकी जो रिटायरमेंट है अक्टूबर में इस साल यानी कि अगले महीने आ रही है, और ये र्यूमर्स थे कि शायद ये एक्सटेंशन के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैंने वे ये सजेस्ट किया था जब मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा था कि दूसरे जजेस अगर एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आप उनको जरूर दें, लेकिन मैं जो है बिल्कुल इसमें नहीं एक्सटेंशन लूंगा। मुझे पता नहीं है कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं, तो मुझे इतना ज्यादा है यानी कि उनका कहने का मतलब था कि एक्सटेंशन का कुछ शौक नहीं है। ये जो मीटिंग थी इसके अंदर उनके साथ बैठे हुए थे फेडरल लॉ मिनिस्टर आजम तारर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर आवान, तो उसमें ये सब बातें इन्होंने इनके साथ की थी। एक बहुत ही मेजर डिसीजन आया है जी, और ये है, ये हुआ है आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ नैब अमेंडमेंट्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उसने ट्रांसफर कर दिए हैं न्यू तोशा खाना रेफरेंस अगेंस्ट इमरान खान एंड हिज वाइफ बुशरा बीबी टू रेलिवेंट कोर्ट। जो आज देखी गई प्रोसीडिंग्स हियरिंग में, जिसमें कि इमरान खान और उनकी वाइफ को न्यू तोशाखाना रेफरेंस के अंदर लेकर आए थे, जिसमें कि कहा गया था कि ये जो ज्वेलरी सेट जो गिफ्ट किए गए थे इनको सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से, ये इन्होंने ले लिए थे, तो उसके अंदर काफी आज चेंजेस देखी गई। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज मोहम्मद अली वराइट जो है वो आज इनकी बेल प्लीज सुन रहे थे इमरान खान और उनकी वाइफ ने जो डाली थी एक मेक शिफ्ट कोर्ट में, जो कि अडेला जेल में लगाया गया था। दोनों को ही कोर्ट के सामने लाया गया था। इमरान खान के लॉयर सलमान सफदर राजा ने आज कोर्ट को कहा कि ये जो नया रेफरेंस है ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट अब नहीं सुन सकती है अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज, क्योंकि रिस्टोर कर दिया है जो पुराना लॉ था इसमें। उन्होंने कहा कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वो अब इस केस को ट्रांसफर करे दूसरे कोर्ट के अंदर। लास्ट वीक लार्जर सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा, उन्होंने अप्रूव किया था इंट्रा कोर्ट अपील्स जो कि फाइल की थी फाइल बाय फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें कि उन्होंने रिस्टोर किया था अमेंडमेंट्स मेड टू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 वाया नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022। अंडर अमेंडमेंट्स ये जो नैब है वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू इन्वेस्टिगेट एनी ग्राफ्ट केस लेस देन 500 मिलियन रूपीज। तो इस पे उन्होंने आज जो है ये इमरान खान के लॉयर साहब ने कहा कि अब आपका ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है और इसको दूसरी कोर्ट के अंदर जो है इसको शिफ्ट करें। नॉर्थ वजीरिस्तान में जी आज फिर से एक बॉम्ब अटैक हुआ, जिसमें कि 6 पुलिस वाले और 7 सिविलियंस जो हैं वो जख्मी हो गए। ये अटैक पुलिस वैन के ऊपर किया गया था एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से, और ये जो हादसा हुआ है ये नॉर्थ वजीरिस्तान के कीर कोट रोड इन वाना रुस्तम बाजार के अंदर हुआ है। पुलिस की जो नफरी है वहां पे फौरन पहुंचे थे और उन्होंने ये जब उनको ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया था, इसके साथ साथ रेस्क्यू टीम्स भी वहां पे आए थे और उन्होंने इंजर्ड जो है उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वाना के अंदर जो है शिफ्ट किया। एक उसमें से जो क्रिटिकली इंजर्ड था उसको डेरा इस्माइल खान के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ये हुआ ये था कि ये 2 पुलिस की गाड़ियां थी और ये जो एंटी पोलियो कैंपेन वाले थे उनको ये जो है कवर दे रहे थे, जिसमें से कि एक जो पुलिस की फिर गाड़ी थी वो जो गुजर रही थी क्रीक कोर्ट रोड से उसके ऊपर फिर ये अटैक हुआ और उसके अंदर फिर जो है वो लोग मारे गए। तो पुलिस ने अब ये सारा एरिया कॉर्डन ऑफ किया है और इन्वेस्टिगेशन जो है जी इसके ऊपर एक बिठाई है। Advisor to Prime Minister on Political Affairs, Federal Minister for Inter-Provincial Coordination, Rana Sanaullah sahab, jo hai, unhone aaj kaha ji ke Imran Khan sahab aur unki PTI jo hai, wo Israeli political brand hai. Aur wo kehte hain ji ke ye ek article jo hai Times of Israel ke andar aaya hai aur ye bilkul wo keh rahe hain ke ye jo Pakistan mein revolution ya jo change aa raha hai, ye inka PTI ka plan hai ke ye 9 मई जिस तरह लेकर आए थे और वो अब क्लियर होता जा रहा है कि इनका क्या प्लान था, तो इस तरह का एक और 9 मई ये लेकर आना चाहते थे. उन्होंने कहा जी कि इनको जो फॉरेन फंडिंग आ रही है और जिस तरह से ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को और फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, ये सब इसराइल का एजेंडा है. उन्होंने कहा जी ये तो एंटायर स्टोरी ऑफ नवाज शरीफ रिमूवल फ्रॉम पावर ये भी अब समझ आने लगा है और ये जो इसराइली न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है. उन्होंने कहा जी कि ये जो अपना इसराइली ब्रांड है इमरान खान साहब, उसको ये इस्लामिक टच दे रहे हैं और सिस्टमैटिकली चीजों को यहां पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ नवी का कि ये जो इजरायली मीडिया ने जो इनके बड़े फेवर में इमरान खान साहब के फेवर में लिखा है, तो इनके फैंस को जरा चेक करना चाहिए कि उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है अब खतरे में है बिकॉज ऑफ पीटीआई. ये आर्टिकल जो है क्लियरली शो करता है कि इमरान खान जो है वो पॉलिटिकली क्या अडॉप्ट करना चाहते हैं. ये पूरी की पूरी कैंपेन जो है वो ज्यूज ने चलाई है और ये इन्होंने भी एक दफा कहा था कि जब ये लंदन में थे तो इन्होंने एक कैंपेन एक ज्यू के लिए चलाई थी और एक मुस्लिम के लिए नहीं चलाई थी. वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी, दिल खुश किया. अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जी कि लोग जो हैं वो उनको मैं कहता हूं कि पीटीआई के रैलीज जो हैं वो स्टॉप करें अटेंड करने, और पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली पिंडी के अंदर और इस्लामाबाद में लोगों ने इनकी जो ये रैली की कॉल था इसको रिजेक्ट किया था और इन्होंने जो स्पीचेस की हैं वो बिल्कुल ये शो कर रही हैं कि ये एक और 9 मई जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे थे. इनकी स्पीचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एनर्की फैलाना चाहते हैं और इन ये जो है इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के साथ लोगों को बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए. वो कहते हैं जी हम देखेंगे कि ये किस तरह से लाहौर में आएंगे, ये जरा हमें अटक ब्रिज जो है क्रॉस करके दिखाएं पीटीआई वाले. उन्होंने कहा जी जैसे ही आप कोई खराबी करेंगे तो यू विल बी पेड इन द सेम कॉइन. उन्होंने कहा जी कि आप को कोई भी जुडिशियल पैकेज नहीं दिया जाएगा, जो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब क्लियर कर चुके हैं. ये सारी बातें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कही. इसके साथ साथ एक वीडियो का मैसेज मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्ला तारण ने भी इमरान खान साहब और पीटीआई की लीडरशिप के लिए दिया. उन्होंने कहा जी ये तो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारी तो रैली में मिलियंस आएंगे और हम तो बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, तो कहां गई वो रैली और कहां गए वो रेवोल्यूशन जो कि हमें नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है, और शायद वो सारे के सारे लोग किसी और कंट्री और किसी और जगह पे चले गए. यानी कि मजे की बात यह है कि ये रेटरिक ये है गवर्नमेंट का कि जो पीटीआई की रैली थी, अगर आप लोगों ने जो लोगों ने तो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाली हुई थी कि हजारों ही की तादाद में जो इन्होंने वो रुकावटें भी डाली हुई थी, फिर भी लोग जो थे वो आ रहे थे और ये रैली अटेंड कर रहे थे, तो फिर भी गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी बंदा नहीं आया था. इसके साथ साथ जो अभी खबरें आई हैं वो ये हैं कि शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और एडवोकेट शुएब शाहीन जो हैं उनको पार्लियामेंट के बाहर से, ये जो पीटीआई के ऑफिशियल थे उनको पार्लियामेंट के बाहर से जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उसकी वजह से पीटीआई ने इसको बड़ा कंडेम किया है और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत है. ये अपनी पीटीआई जो है मूवमेंट पंजाब में भी एक्सपैंड करेगा और 2 वीक्स का डेडलाइन दिया है टू रिलीज इमरान खान. ये जो रैली हुई है उसके अंदर ये मैसेज दिया केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने, और ये जो रैली थी ये हो रही थी संगजियानी के ऊपर जहां पे कि उनको बेतहाशा मुश्किलें लोगों को पेश आई क्योंकि यहां पे बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े कर दिए थे, रास्ते रोक दिए थे ताकि लोग जो है वो ना आ सकें, लेकिन फिर भी लोग जो है उस रैली में पहुंचे और वो इट वॉज अ रीजनेबली डिसेंट रैली. और वो कहते हैं जी कि हम 2 हफ्ते दे रहे हैं आपके इमरान खान साहब को, फौरन छोड़ो. और गंडापुर साहब ने कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो सबसे पहले मैं मार्च करके आगे जाऊंगा और मैं सबसे पहले अपने सीने पे जो है वो गोली खाऊंगा. आपको पता ही है कि ये पीटीआई की ये रैली जो है बहुत दफा जो है वो पोस्टपोन की गई थी और फिर उसके बाद होते होते ये September 8 को ही है, क्योंकि एनओसी कभी नहीं दिया जा रहा था, कभी गवर्नमेंट मान नहीं रही थी, फाइनली इनको फिर जो है एनओसी दिया गया था. और तो जुलाई से लेके अभी तक 2 दफा इनकी ये रैली जो है वो की थी. अच्छा, अब ये जब रैली हुई और ये अली अमीर गंडापुर साहब ने ये सारे मैसेजेस दिए तो उसके ऊपर पीएमएलएन के सेनेटर जो है तलाल चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि हम गंडापुर साहब के खिलाफ जो है एक लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स इनके साथ आए हुए थे उन्होंने पत्थर मारे पुलिस के ऊपर और चुंगी नंबर 26 जो है इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में वहां पे फिर इनकी लड़ाई हुई पुलिस के साथ और पुलिस ने फिर जो है इनके ऊपर جو ہے وہ ٹیئر گیس بھی ماری اور کافی ان کے بیچ میں لڑائی جھگڑا تو رہا تھا, لیکن چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, پولیس نے کچھ نہیں کیا, ان لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ لڑائی کی پولیس والوں کے ساتھ, اور جہاں پہ کہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ڈیزگنیٹڈ روٹس ہیں وہاں پہ آپ رہیں, تو وہاں پہ یہ رہنا نہیں چاہتے تھے اور وہاں سے یہ آگے آگے, تو اس میں جناب انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب پرابلم ہے. پاکستان کے اندر جو گیس کا کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اگر یہ جو گیس بیسڈ سی پی پی یعنی کہ کیپٹیو پاور پلانٹس جو ہیں ان کو, ان سے اگر گیس کم کی گئی تو اس میں سوئی گیس کمپنیز جو ہیں ان کو تقریباً 420 بلین روپیز کا نقصان آئے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ڈیسیجن ہے ٹو سوئچ انڈسٹریل سیکٹر ٹو نیشنل گریڈ تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. سینئر سورسز ایٹ انرجی منسٹری جو ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ تقریباً 420 بلین پر اینم کا نقصان ہو سکتا ہے فرام سی سی پیز فار سسٹین انڈسٹریل ایکٹیویٹی. انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہم 100 بلین روپیز کی سبسڈیز دیتے ہیں کراس سبسڈیز وہ بھی ہم کنزیومرز کو نہیں دے سکیں گے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تقریباً جو سی سی پیز ہیں سی پی پیز جو ہیں دے اسٹینڈ ایٹ 1180 سوئی سدر سسٹم جو ہے اس کے اندر نمبر جو ہے ان کا 797 ہے, سوئی ناردرن جورسڈکشن جو ہے اس کے اندر 383 جو ہیں وہ کمپنیز ہیں, یہ جو ہیں یہ بلک آف کنزیومرز جو ہیں یہ سی پی پی سے گیس لیتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے ان کو پھر جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو سبسڈیز بھی دی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اتھارٹیز جو ہیں اگر انہوں نے نئے گیس کنزیومرز فائنڈ آؤٹ نہ کیے ٹو یوز 300 MMCFD گیس تو ان کمپنیز کو بے تحاشا نقصان بھی ہوئے گا اور وہ پھر سبسڈیز بھی گیس کی نہیں دے پائیں گی. تو جناب گیس تو پہلے ہی نہیں آ رہی تو پھر ہن اور تسی کوئی نویاں چیزاں کرو گے تو پھر یہ پرابلم تو جو ہے وہ آئے گا. آج ایک پیسنجر ایئر کرافٹ جو ہے جو کہ ٹریول کر رہا تھا شارجہ سے ڈھاکہ, اس نے ایک ایمرجنسی لینڈنگ کی جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے اندر, کیونکہ ایک جو ٹریولر تھا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان مڈ فلائٹ. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو پرمیشن دی تھی میڈیکل, کیونکہ ایمرجنسی ہو گئی تھی ڈیورنگ شارجہ ڈھاکہ فلائٹ, اور میڈیکل چیک اپ پھر جو جب ڈاکٹر کو بلایا گیا وہاں پہ کراچی ایئرپورٹ پہ اور اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ بندہ آلریڈی مر چکا تھا. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے میڈیا کو بتایا کہ جو فلائٹ G9512 جو تھی یہ لینڈ کی تھی آفٹر ایئر ٹریفک کنٹرولر ان کراچی جو تھا انہوں نے ان کو پرمیشن دی تھی, پھر باڈی کو چیک کرنے کے بعد ہینڈ اوور کیا گیا ہے ٹو ایئر لائن آفٹر میڈیکو لیگل فارمیلٹیز. اس سے پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا February 20 کو وین سعودی ایئر لائنر میڈ این ایمرجنسی لینڈنگ ان کراچی. یہ ایک ریاض باؤنڈ فلائٹ تھی فرام ڈھاکہ جس کے اندر ایک بندے کی ٹریولر کی حالت بے انتہا خراب ہو گئی تھی اور کراچی میں پھر روکنا پڑا تھا ایمرجنسی میں اور اس کو پھر جو ہے میڈیکل ہیلپ دی گئی تھی. تو یہ جناب اب دوسرا واقعہ ہے. ہندوستان کے اندر جو لیڈرز ہیں جناب وہ یاترا پہ نکلے ہوئے ہیں پھر سے اور کچھ لوگ ان کے ملک میں بھی آئے ہوئے ہیں. ہماری جو ہندوستان سے آج پہلی خبر ہے وہ ابو دھابی کے جو کراؤن پرنس ہیں شیخ خالد بن محمد الزائد النہیان وہ مودی جی سے ملنے کے لیے ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں. مودی جی جو ہیں انہوں نے ان کو ریسیو کیا تھا حیدرآباد ہاؤس میں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ انڈیا کے سٹانس میں چینج آئی ہے, ورنہ وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی انگیج کرتی ہے, لیکن یہ فار دا فرسٹ ٹائم جو نیکسٹ جنریشن آف رائلٹی ہے مڈل ایسٹ کی اس کے ساتھ انڈیا نے بھی اب انگیج کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ ایجنگ کنگز ہیں وہاں پہ تو نیکسٹ جنریشن جس نے کہ اب ساری چیزیں سنبھالنی ہیں ان کے ساتھ دوستی بنائی جائے. مودی جی نے بے شمار ان کے ساتھ ابو دھابی کے ساتھ جو ہیں وہ ملٹیپل پیکٹس جو ہیں وہ سائن کیے ہیں ان نیوکلئر انرجی آئل فوڈ پارکس ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے تو انہوں نے سائن کی ہے ڈیل ان دا فیلڈ آف برکا نیوکلئر پاور پلانٹ آپریشنز اینڈ مینٹیننس. یہ جو آپریشنز رہیں گے بٹوین ایمریٹس نیوکلئر انرجی کمپنی اینڈ نیوکلئر پاور کوآپریشن آف انڈیا لمیٹڈ کے بیچ میں ہوئے گی. ایک لانگ ٹرم LNG سپلائی بٹوین ایڈنوک جو کہ ابو دھابی نیشنل آئل کمپنی ہے اس کے بیچ میں اور انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے بیچ میں ہے. تیسرا ایڈنوک انڈیا اسٹریٹجک پیٹرول ریزرو لمیٹڈ کے بیچ میں ہوا ہے جو ہے وہ ڈیل. اس کے علاوہ کنسیشنل ڈیلز ہوئی ہیں فار ابو دھابی آف شور بلاک 1 بٹوین ऊर्जा भारत और एडनॉक के बीच में। इसके साथ साथ एमओयूज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के बीच में भी हुई हैं ऑन फूड पार्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके बाद जो है जो प्रिंस साहब हैं उनकी जब मुलाकातें और ये सारे जो जो डील्स हैं ये हो गए तो उन्होंने बहुत ही रिच ट्रिब्यूट्स दिए महात्मा गांधी को एट राजघाट और उन्होंने कहा जी कि उनकी टीचिंग्स हमें बड़ा इंस्पायर करती हैं। और उसके बाद जो है प्रिंस साहब अब मुलाकात करेंगे इंडिया की प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू के साथ। तो ये जनाब काफी बड़ी आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स हैं जो कि आज इन्होंने की हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जी जो हैं जी वो 3 दिन की यात्रा के ऊपर यूएस में आए हुए हैं। जब वो पहुंचे डैलस टेक्सस में तो यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है और जो इंडियन ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन है IOC उसने इनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अपने सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स डालते हुए उन्होंने कहा जी आई एम ट्रूली डिलाइटेड फॉर द वार्म वेलकम गिवन टू मी इन डैलस। और वो कहते हैं जी कि मैं बहुत ही मीनिंगफुल अंदाज में यहां का जो डायस्पोरा है उसके साथ मैं डिस्कशंस भी करूंगा और हम कॉन्वर्सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि ये जो हम दोनों देशों के बीच में रिश्ता है यानी कि अमेरिका और इंडिया के बीच में उसको और ज्यादा कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ये 2024 के जो भी लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसके बाद इनका ये पहला ट्रिप है टू यूएस। उसके बाद जो है ये अब वॉशिंगटन डीसी में जाएंगे और वहां पे भी कुछ वक्त गुजारेंगे। IOC के जो चीफ हैं सैम पिट्रोडा उन्होंने कहा कि इंडियन डायस्पोरा इंक्लूडिंग NRI जो हैं वो और टेक्नोक्रेट्स बिजनेस लीडर्स स्टूडेंट्स मीडिया पर्सनालिटीज और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्होंने इनको वेलकम किया और वो इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। टेक्सास के अंदर राहुल ने कहा कि जब से जैसे ही हिन्दुस्तान के अंदर पोल्स खत्म हुए तो कोई भी जो है बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर से डरा हुआ नहीं रह गया था क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इन द लॉन्गेस्ट पीरियड इनको हराया गया था। लेकिन ये जो अचीवमेंट है ये राहुल गांधी की या कांग्रेस की नहीं है, ये जो अचीवमेंट है ये पीपल ऑफ इंडिया की है और उनको पता चल गया है कि हमारा जो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कौन अटैक कर रहा है। उन्होंने कहा जी कि मुझे ये भी बुरा लगता है जब उनसे पूछा गया कि औरतों के खिलाफ जो आपके मुल्क में बुरा एक्शन किया जाता है, वो कहते हैं हाँ जी इंडियन मैन जो है उसका एटीट्यूड अभी भी बड़ा रिडिकुलस है औरतों के तरफ, तो ये माइंड सेट जो है ये चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हिन्दुस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट के बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि चाइना और वियतनाम, वहां पे एम्प्लॉयमेंट के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन हमारे मुल्क में बिल्कुल जॉब्स नहीं है ज्यादा। यानी कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी ने फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया। उन्होंने कहा जी राहुल गांधी साहब जो है उनकी हमेशा आदत होती है कि वो हमेशा चाइना की तारीफें करते हैं और जो इंडिया का लीगल सिस्टम और बाकी सिस्टम्स हैं उनके ऊपर ये इतराज करते हैं इसलिए कि इनको अब बेल मिल गई है या बाहर आ गए हैं तो अब ये कुछ भी कह सकते हैं। भंडारी साहब ने कहा कि अब ये पप्पू नहीं रहा है, ये बहुत ही ईवल बंदा बन गया है, इसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो इंडिया के खिलाफ शो करती हैं कि ये सब झूठ है और ये जो है हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा राहुल गांधी हमारे गॉड्स को इंसल्ट करता है और वो कहता है कि वो जो है ही डजंट मीन गॉड यानी कि जो गॉड जी से बड़ा लिखते हैं वो। और फिर उन्होंने कहा जी कि इसकी जो स्पीच थी जो हम सुन रहे थे टेक्सास में वो भारत के खिलाफ थी और इंडियन वुमेन जो है उसके भी खिलाफ थी। तो ये बीजेपी के भंडारी साहब ने राहुल गांधी के बारे में कहा। तो यानी दोनों तरफ से जो है काफी मारामारी आप कह सकते हैं कि चिल रही है जी ऐसे है। रणवीर कपूर साहब जो हैं जनाब आप अपनी जो नई आने वाली फिल्म है उसके लिए बड़े ज्यादा वो बिजी नजर आ रहे हैं और नितिश तिवारी की एक एडेप्टेशन है माइथोलॉजिकल जो इनका एपिक है रामायण उसके ऊपर वो बना रहे हैं और इसके अंदर जो साउथ की ब्यूटी है साई पल्लवी वो नजर आएंगी। इसके अंदर रणवीर कपूर जो हैं वो लॉर्ड रामा का रोल करते हुए मिलेंगे लेकिन इसके अलावा एक दूसरे एवेटार में वो लॉर्ड विष्णु भी नजर आएंगे इस फिल्म में। इसके साथ साथ इस फिल्म में उनके साथ बिग बी जो हैं वो भी नजर आएंगे। फरदीन खान आपको पता ही है कि फिरोज खान के बेटे हैं और बड़े अरसे के बाद वापस आए हैं। अभी हीरा मंडी में देखे गए थे और उसके बाद जो है अभी जो खेल खेल में आई थी अक्षय कुमार की फिल्म उसमें देखने में आए थे। इनकी एक बहुत ही हिट फिल्म आई थी 2005 में नो एंट्री जिसके के अंदर सलमान खान और अनिल कपूर भी थे और उसके अंदर जो है इन्होंने काम किया था। अब खबरें आ रही हैं कि शायद इसका सीक्वल बनने वाला है। जब इनसे पूछा गया फरदीन खान से कि क्या आप सीक्वल में नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो प्रोड्यूसर बोनी कपूर साहब ही आपको बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता हूं। हां अलबत्त मैं उनके लिए शुक्रगुजार जरूर हूं, क्योंकि ये मेरी पहली कॉमेडी फिल्म थी जिसके अंदर मैंने बहुत ही सिली और फनी और गुफी कैरेक्टर प्ले करना था, जो बहुत ही वल्नरेबल है, नाइव है, और मैं तो अपने आप को उस रोल में देख नहीं सकता था। लेकिन बोनी कपूर साहब को कुछ मेरे में नजर आया, ही बिलीव्ड इन मी, और उनको लगा कि ये रोल मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने कहा कि ये तुम ही करोगे, तो मैं बड़ा हैरान हूं, और मैंने उनसे पूछा रियली अब जो इसका रीमेक आ रहा है तो उसके लिए मुझे कुछ पता नहीं है, और सॉरी सीक्वल जो आ रहा है उसके लिए मुझे पता नहीं है, उससे आप उसी के लिए बात करें। जब उनसे पूछा गया कि ये फिल्म किसके ऊपर बेस्ड थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये रीमेक थी चार्ली चैपलिन जो 2002 में आई थी उसकी, और लेकिन जाहिर है कि हमने उसको जो है अपने हिंदी वर्जन में उससे डिफरेंट बनाया था, और मैंने फिर उसमें अपना जाहिर है कि रंग जो है वो ऐड किया था। तो बड़ी हिट मूवी थी उस वक्त की ये। आज थी जनाब अक्षय कुमार साहब की बर्थडे एंड ही टर्न्ड 57, और इस मौके पे उन्होंने एक पोस्टर जो है वो अपने फैंस के लिए अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है, और वो कह रहे हैं जी कि अब मैं भूलैया तो नहीं बल्कि भूत बंगला के अंदर नजर आऊंगा। जो उनका पोस्टर आया है उसके अंदर देखा जा रहा है कि उनके एक हाथ में एक दूध का कटोरा है जो वो पीने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके कंधे के ऊपर एक बिल्ली है, और जो बैकग्राउंड है उसमें नजर आ रहा है आपको एक स्पूकी सा मैंशन। तो वो कह रहे हैं कि ये फिर से मैं 14 साल के बाद भूल भुलैया का ही जो डायरेक्टर है प्रिया दर्शन उसके साथ ये मैं दूसरी हॉरर कॉमेडी करूंगा, मगर इसका नाम भूल भुलैया नहीं भूत बंगला है। तो जनाब लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि उनकी बड़ी जबरदस्त